साथियों नमस्कार, छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से दिनकर पातुकर। आज 26 नवंबर संविधान दिवस पर आज हमारे साथ तर्कशील संस्थान के सचिव रेशनलिस्ट एवं वरिष्ठ पत्रकार पीकेश गुर्वे जी छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी पर रूबरू होने जा रहे। नमस्कार गुर्वे जी।
नमस्कार पातुकर जी।
गुर्वे जी, हम आपसे जानना चाह रहे, आज संविधान दिवस संपूर्ण देश में मनाया जा रहा है, क्या संविधान जाने से लोगों को उनके मौलिक अधिकार मिल जाते हैं?
देखिए पाटिलकर जी, आपका ये जो सवाल है ना, ये आपका सवाल बड़ा गंभीर है। गंभीर इसलिए भी है कि आज 72 साल के संविधान को हो रहे हैं। हम हर वर्ष इसी दिवस पर संविधान दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। कहीं हम जलसे मनाते हैं, कहीं हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, कहीं चिंतन गोष्ठी भी होती है। सवाल इस बात का है कि क्या, आपका सवाल बड़ा अच्छा है कि क्या संविधान बन जाने से लोगों को उनके मौलिक अधिकार मिल जाते हैं। देखिए पाटिलकर जी, संविधान तो बना लिया गया, संविधान तो लिख लिया गया, संविधान को लागू भी कर दिया गया, लेकिन उनके मौलिक अधिकार लोगों को तक पहुँचाने का काम जिन लोगों के हाथ में है उनके ऊपर निर्भर होता है कि संविधान का सही उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था, जब ये संविधान जब लागू हुआ था तब उन्होंने कहा था कि ये संविधान तब बेहतर होगा जब इस संविधान के अनुरूप काम करने वाले लोग अच्छे होंगे। यदि संविधान कहीं थोड़ा गड़बड़ भी हो जाता है लेकिन उसको चलाने वाले लोग, उसका संचालन करने वाले लोग यदि अच्छे है तो संविधान अपने आप में अच्छा हो जाएगा। लेकिन संविधान कितना भी अच्छा हो, उसमें कितने भी अच्छे अधिकार दिए गए हो, लेकिन उसका संचालन करने वाला, उसे लागू करने वाले लोग यदि अच्छे नहीं होंगे तो इसका कोई उपयोग नहीं होगा। हम इस देश में, भारत में वर्तमान परिस्थितियों को हम देख रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियां यही बताती हैं कि आज भी जो है संविधान के अधिकार कुछ सीमित लोगों तक ही सिमट कर रह गए हैं। मूलतः जिन लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल रहा है और मौलिक अधिकार आज भी लोगों को नहीं मिल रहे हैं। हम पहले कहते थे कि मनुवाद और मनुस्मृति का हम उल्लेख करते हैं, नाम लेते हैं, ब्राह्मणवादी विचारधाराओं का नाम लेते हैं। संविधान बनने के 72 वर्ष बाद भी इस देश में पुरोहितशाही आज भी कायम है, सामंतवाद आज भी कायम है, जाति प्रथा धर्म पंथ संप्रदायों में भेद आज भी कायम है, और इसके चलते इसका जो मूल जो लाभ लोगों को मिलना चाहिए, मूल जो अधिकार लोगों को मिलना चाहिए, मौलिक अधिकार आज भी नहीं मिल रहे हैं। आज भी आप दूरस्थ अंचल में चले जाइए, वहाँ मौलिक अधिकार क्या है लोगों को यही पता नहीं है। और 72 साल हो गए हम लोगों को मौलिक अधिकार ही नहीं समझा पाए है।
गुरुवे जी,
हाँ,
हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, इसमें कुल 390 सदस्य थे, लेकिन के लिए सिर्फ अकेले डॉक्टर बाबा आम्बेडकर का ही नाम लिया जाता है और उन्हीं का मान्यता, ऐसा क्यों?
पाटिलकर जी, आज संविधान बोला मुझे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, यही नाम सामने, यही नाम आता है और हम कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान लिखा। बात आपकी बराबर है, क्योंकि संविधान मसौदा समिति जो बनी थी इसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर थे और इस समिति में लगभग 389 सदस्य इसमें थे। उन सदस्यों का नाम क्यों नहीं लिया जाता, इस पर आज हम बात करेंगे। और इसके पीछे मूल कारण ये है कि इस संविधान सभा में अन्य लोग जो शामिल थे उसमें कई लोग तो ये, कुछ लोगों की ये स्थिति थी कि वो संविधान पर पूरी तरह काम नहीं कर पाए। कई लोग ऐसे थे कि जो अपने व्यक्तिगत कामों में, देश आजाद होने के बाद में अपने व्यक्तिगत कामों में रहे। कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ लोग उसमें से जो थे संविधान पर काम करना ही नहीं चाहते थे, और ये पूरा का पूरा जो जिम्मा है, पूरा जिम्मा जो है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पर आ गया था। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पर इस जिम्मेदारी आने के बाद में बाबा साहब अंबेडकर ने उसका था उसका पूर्णतः निर्माण किया था। हमारे यहाँ बापू भी थे, गांधी जी थे, गांधी जी भी बैरिस्टर थे, नेहरू जी भी बैरिस्टर थे, लेकिन एकमात्र डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे जिन्होंने अपना पूरा समय संविधान लिखने को दिया और संविधान पर काम किया, और काम ही नहीं किया तो इतना अच्छा संविधान बनाया कि ये भारत देश की तत्कालीन परिस्थितियों को और आने वाली परिस्थितियों के सामने रखकर लिखा गया। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखते समय में इस देश का जो राज छत्रपति शिवाजी महाराज हुए, इस देश के जो अन्य पुरोगामी विचारधारा के समाज सुधारक हुए, पुरोगामी विचारधारा के चिंतक हुए, उन लोगों के द्वारा रखी गई बातों का अध्ययन करकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यह संविधान बनाया था। और दूसरी बड़ी बात यह है कि संविधान कमेटी में बाकी जो दूसरे लोग थे वो कई इस पर ध्यान नहीं दे पाए, और अंततः पूरा जिम्मा जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर आया और उन्होंने इसका निर्वहन किया। बात ये आपकी सही है कि अन्य लोगों के भी नाम लिए जाने चाहिए, लेकिन जिस प्राथमिकता से, जिस जिम्मेदारी से बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, यदि बाबा साहब अम्बेडकर ये संविधान नहीं लिखते तो शायद संविधान का प्रारूप कुछ और होता, संविधान का स्वरूप कुछ और होता। ये जिस तरह से ये सार्वभौमिक रूप से जो संविधान बनकर आया है शायद ये नहीं बन पाता। इसलिए आज भी संविधान बोला यानी संविधान के साथ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम प्राथमिकता से इसलिए जुड़ता है।
गुरु जी, अधिकतर देखने में आता है संविधान दिवस के आयोजन जो उसके जो आयोजक या तो अम्बेडकरवादी या अम्बेडकर अनुयायी या बौद्ध अनुयायी ही होते, अन्य समाज या वर्ग के लोग संविधान दिवस मनाने को प्राथमिकता नहीं देते, ऐसा क्यों?
देखिए दिनकर जी, इस देश में जो शोषित पीड़ित वर्ग था, जो मनोवादी व्यवस्था का पीड़ित था, उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म स्वीकार किया, उनके साथ में इन लोगों ने भी बुद्ध धर्म स्वीकार किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरीके से इस शोषित पीड़ित वर्ग को उद्धार के लिए काम किया, संविधान ने उसके लिए व्यवस्था बनाई, इसके चलते ये हो रहा है कि भी बाबा साहब अम्बेडकर यानी आज भी हमें कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर दलित शोषित पीड़ितों के नेता थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हम एक जाति वर्ग विशेष के नेता मानकर चलते हैं, जबकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के सभी जाति पंथ धर्म संप्रदाय वर्ग के नेता थे। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आप देखिए कि यदि वो शोषित पीड़ित वर्ग जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग को यदि प्राथमिकता देते, तो संविधान की अनुच्छेद में अनुच्छेद 340 में सबसे पहले SC होते हैं, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 340 में सबसे पहले सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग को रखा गया है, यानी जिसको हम स्पष्ट रूप से OBC कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि ओबीसी वर्ग के लिए यानी सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग था उसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रथम स्थान दिया है उनके उद्धार के लिए, उनके विकास के लिए। लेकिन हो क्या रहा है कि हम इस ओबीसी के वर्ग के लोगों को आज तक संविधान और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही नहीं समझा पाए हैं। और इस देश में क्या हुआ है कि संत महापुरुषों का भी इतिहास उठा के देख लीजिए, वो जिस वर्ग के जिस धर्म पंथ संप्रदाय जाति वर्ग से आते हैं वे उनके निधन के बाद में, संतों के निधन के बाद में वो उसी जाति वर्ग में सिमट कर रह गए। फिर आप संत तुकाराम लो, संत ज्ञानेश्वर लो, तुकड़ोजी महाराज लो, गाड़गे बाबा लो, ज्ञानेश्वर अपना नामदेव महाराज लो, कबीर लो, रामास्वामी PTR को आप सामाजिक सुधारक में ले लो, समाज सुधारक ठाकरे को आप ले लो। हो क्या रहा है इन समाज सुधारकों को, इन सामाजिक चिंतकों को, संतों को हमने जाति वर्ग धर्म संप्रदाय में बांट के रख दिया है। वही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के साथ में भी आज ओबीसी का वर्ग डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को स्वीकार नहीं करता। इसमें एक बात ये भी रही है कि आम्बेडकर मिशनरी से जुड़े हुए लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जाने के बाद में उनके विचारों को, उन्होंने दिए हुए धम्म को इस वर्ग ने संगठित होकर समाज के हर वर्ग तक बाबा साहब आम्बेडकर के विचार पहुंचाने की बजाय यही लोग कई संगठनों में विभक्त हो गए और कई संगठनों में विभाजित होने के बाद में हर किसी ने अपने संगठन की सुरक्षा के हिसाब से काम करना शुरू किया है। मूलतः बाबा साहब के विचार बाजू में रह गए हैं। प्रसिद्ध शायर या हम ये कहे कि प्रसिद्ध जो जो शायर थे उन्होंने भी अपने शब्दों में कहा था कि धीमा तुझा मता चीजर पांच लोग असते, तलवारी चे तया चे टोकच न्यारे असते, अरे वाणी तो भीमा है करनी तो भीम असता, वतन तुझा या पिला के सारे चोख असते। ये वामन दादा करडक ने लिखी हुई लाइनें हैं। वामन दादा करडक कहते थे कि इस देश में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाले लोगों के जबान में तो बाबा साहब आम्बेडकर हैं लेकिन कर्म में बाबा साहब आम्बेडकर नहीं है। और यही हुआ, इस कारण बहुजन वर्ग तक हम बाबा साहब आम्बेडकर और उनके विचारों को नहीं पहुंचा पाए। बाबा साहब आम्बेडकर पर हमें आरोप लगाते कि उन्हें एससी वर्ग को जो है उन्होंने आरक्षण दिया, जबकि उन्होंने एससी वर्ग के लिए मात्र 10 वर्षों के लिए आरक्षण दिया था। बाद में राजनीतिक दलों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस आरक्षण को आगे बढ़ाते रहे और आरक्षण आज देश में आरक्षण का स्वरूप ही इस देश में बदल गया है। आरक्षण को लेकर अब आंदोलन होने लगे है, आरक्षण को लेकर विभाजन होने लग गया है। तो इसलिए बाबा साहब को हम समझे नहीं है, और बाबा साहब को यदि हम समझे होते तो ओबीसी का वर्ग बहुजन वर्ग बाबा साहब को मानता। विचारों के साथ साथ में चीज यही हुई है कि संविधान भी आज कितने लोगों को समझता है। मैं तो कहता हूँ कि हम अपने घर में हमारी श्रद्धा आस्था उपासना अलग हो सकती है, वो हमारा स्वतंत्र विचार है, वो हमारी स्वतंत्रता है, लेकिन जब हम बाहर निकलते तो तब हम भारतीय कहाँ होते हैं। हम बाहर निकले तो फिर अब पहले हम प्रदेश में विभाजित होते हैं, प्रदेश के बाद में हम जाति पंथ धर्म संप्रदाय में विभाजित हो जाते हैं, जबकि संविधान ने कहा कि हम भारत के लोग। जिस दिन हम भारत के लोग हो जाएंगे उस दिन बाबा साहब आम्बेडकर और संविधान समझने में आसानी होगी। यही कारण है कि ये सारे आयोजन एक निश्चित वर्ग तक सिमट कर रह गए हैं। इसको आज समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने की आवश्यकता है, तब ही संविधान सशक्त होगा, संविधान मजबूत होगा और संविधान में दिए हुए मौलिक अधिकार और अन्य अधिकारों अधिकार बहुजन वर्ग तक पहुंच पाएंगे।
गुरु जी, एक आपसे अंतिम प्रश्न, जैसा कि आप रेशनलिस्ट हो, सचिव भी हो और भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से भी आप लंबे समय से जुड़कर मध्य प्रदेश में काम कर रहे हो, भारतीय संविधान में अंधश्रद्धा के लिए भी प्रावधान है लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहा है, इसके पीछे क्या कारण है?
देखिए दिनकर जी, भारतीय संविधान के धारा 51H में पूर्णतः ये अधिकार पूर्णतः उल्लेखित किया गया है, व्यवस्था बनाई गई है कि अंधविश्वास को दूर करने के लिए पहली जिम्मेदारी उस राज्य की होती है, उसके पूरे स्वतंत्र अधिकार राज्यों को दिए गए हैं, लेकिन राज्यों में इसका उपयोग कितना किया जाता है, इसका उपयोग ही होता नहीं है। आज भी यदि अंधविश्वास से अंधश्रद्धा से जुड़ी हुई किसी घटना को, घटना पर जब आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो पुलिस तो सबसे पहले सवाल आपको ये करती है कि हम इसको किस धारा के तहत मामला कायम करें। इसका मतलब ये है कि धारा 51H को ना तो संबंधित राज्य इसको समझ पा रहे हैं और ना इसके इसकी जो मंशा है उसके हिसाब से काम कर पा रहे हैं। इसलिए आज भी यदि ये धारा 51H, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्यों पे है, इस राज्य पर है, लेकिन इसका उपयोग नहीं हो रहा। यही कारण है कि टेलीविजनों के बोलो या अन्य माध्यमों में, अन्य प्रसार माध्यमों में, संचार माध्यमों में, माध्यमों के माध्यम से लोगों में अंधविश्वास फैलाए जाते हैं, लेकिन राज्य की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो यही कारण है कि संविधान में, मैंने इसलिए कहा था कि संविधान का उपयोग कब, तो संविधान का यही है ना कि संविधान में उल्लेखित तो किया गया है धारा 51, लेकिन उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाज में फैलाने के लिए कौन से राज्य काम कर रहे हैं? किसी भी राज्य में काम नहीं हो रहा है। और राज्य यदि ये काम करने लग जाए, क्योंकि राज्यों को ये काम करने के लिए स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन ये काम करने लग जाए, मैं तो कहता हूँ कि देश अंधविश्वास ही खत्म हो जाएगा, बल्कि उल्टा हो रहा है। अंधविश्वास फैलाने का काम किया जाता है, कभी गणेश जी दूध पिलाने की अफवाहें फैलाई जाती है, तो कभी चांद में साईं बाबा दिखने की अफवाहें फैलाई जाती है, और ये हो रहा है, लेकिन इस पर संबंधित राज्यों द्वारा प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। इसलिए संविधान में उल्लेखित रहने के बावजूद भी समाज से अंधविश्वास दूर करने में, समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक चेतना स्थापित करने के लिए, तर्कशील लोगों को बनाने के लिए राज्यों की ओर से कोई काम नहीं हो रहा है।
यह थे तर्कशील संस्थान के सचिव रेशनलिस्ट एवं वरिष्ठ पत्रकार पितेश गुर्वे जी, जिन्होंने आज संविधान दिवस के अवसर पर छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से रूबरू होकर अपनी बात कही। छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है।
धन्यवाद ठाकुर जी, नमस्कार।
नमस्कार।